जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सब लोग बोलिए कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। सब लोगों को विनती है, एक बार सब लोग हृदय से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इससे भी जोर से हो सकता है थोड़ा सा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। रविवार का प्रीति भोज कार्यक्रम श्रील प्रभुपाद जी की संस्था में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम। सब लोग रविवार को कुछ न कुछ ऐसे काम करते हैं जो उनको नहीं करने चाहिए, लेकिन आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में रविवार का आपका छुट्टी का दिन, आराम, बचे हुए काम सब छोड़कर भगवान के मंदिर में भगवान के भक्तों के साथ कुछ भगवान की बातें सुनने के लिए आए हैं, इसलिए मैं आपका बहुत ऋणी हूँ और कृतज्ञ हूँ। क्योंकि मनुष्य जीवन जो है वो भगवान की अनुभूति के लिए दिया गया। मनुष्य जीवन में बहुत सारे काम हम कर सकते हैं जो जानवर नहीं कर सकते हैं, अनेक काम ऐसे हैं जो जानवर नहीं कर सकते हैं, पंछी नहीं कर सकते हैं, जो मनुष्य करते हैं, कर सकते हैं अपने बुद्धि के आधार पर, अपने मनुष्य जीवन के आधार पर। लेकिन इन सब मनुष्य को करने वाले और कर सकने वाले कार्यों में सर्वश्रेष्ठ कार्य है कि भगवान की अनुभूति करना हो, ये भी सुविधा मनुष्य जीवन में प्राप्त है और ये सुविधा सबसे बेस्ट सुविधा है। बाकी जानवर धन नहीं कमाते हैं, लेकिन करते वही है जो हम करते हैं, वो भी भोजन को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं, हम भी भोजन को प्राप्त करने को कार्य करते हैं, कोई बड़ा नहीं कार्य करते हैं। करे हमारा जो भोग लेने की प्रवृत्ति है थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड है, हम थोड़ा थाली में खाते हैं, पका कर खाते हैं, अलग अलग प्रकार के व्यंजन अलग अलग रख के खाते हैं, बहुत रेसिपीज हैं, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, ईस्ट इंडियन, वेस्ट इंडियन। लेकिन जानवर भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, जानवर भी प्रजा उत्पन्न करते हैं, हम भी प्रजा उत्पन्न करते हैं, लेकिन हम विवाह संस्था में करते हैं, विवाह संस्कार होता है, मैरिज सेरेमनी होता है, उसके अंदर हम संतति उत्पन्न करते हैं। जानवर भी रक्षा करते हैं, हम भी रक्षा करते हैं, बंदूक लेकर बम बनाते हैं, तो ये भोग लेने की प्रवृत्ति सेम है, लेकिन क्योंकि हम मनुष्य है इसलिए हम अपने तरीके से करते हैं, लेकिन प्रिंसिपल तत्व जो है वो सेम है। लेकिन मनुष्य जीवन तब मनुष्य जीवन बनता है जब वो जीवन भगवान से जुड़ जाता है। जब तक वो जीवन मनुष्य होने पर भी भगवान से जुड़ा नहीं है, वो पशु जीवन है, उसको श्रीमद् भागवत में द्विपद पशु कहा गया है, दो पैर वाले पशु। तो ये द्विपद पशु वाले स्थिति से ऊपर उठना है तो वो एक ही चीज से हम उठ सकते हैं, वो है भगवान से संपर्क, भगवान से संबंध, भगवान से संबंधित जीवन, भगवान के लिए बीता हुआ जीवन, फिर हम मनुष्य बनकर आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद में हमको भक्त बनना है उनका। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था बनाई, अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो कृष्ण भावना के लिए बनाई, उसका नाम ही कृष्ण भावना अमृत संघ है, जिससे हमारे अंदर जो भावना है उसको कृष्ण भावना बनानी है, जो आगे जाकर कृष्ण भावना अमृत बनेगा और मनुष्य जीवन सार्थक होगा। भागवत के स्कंद में लिखा है कि परीक्षित महाराज के लीला में कि जब चार नियम का पालन हम करते हैं तो वह मनुष्य बन जाते हैं, जब मांसाहार नहीं करते हैं यानी कि हिंसा नहीं करते हैं, व्यभिचार नहीं करते हैं, नशा नहीं करते हैं और जुआ नहीं खेलते हैं और भगवान के नाम का जप करते हैं, चार निषेध है एक विधि है, ये जब विधि निषेध पालन करते हैं तो हम मनुष्य स्तर पर आ जाते हैं। उसके आगे जाकर हमको भक्त बनना है, उसके आगे जाकर सत्संग करना है, प्रसाद ग्रहण करना है, श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना है, भगवान के विग्रह का पूजन करना है, धाम में निवास करना है, तुलसी जी की पूजा करनी है, ऐसे ये 6 मैंने बताया आपको, ऐसे 64 रूप गोस्वामी महाराज ने बताए हैं जो चार नियम पालन करने के बाद आरंभ होते हैं। और ये सब करने का मौका हमें मिले इसलिए इस्कॉन संस्था बनाई गई है। इस वाले समाल कृष्ण महाराज कहते थे कि भक्तों के इस उच्च प्रकार के संघ को प्राप्त करने के लिए ये वास्तु बनाई गई है। और मंदिर वैकुंठ का क्या कहते हैं उसको, प्रतिनिधि है, वैकुंठ ही है, स्वयं वैकुंठ का एक सैंपल है, यहाँ पर पृथ्वी पर बनाया गया है। तो इसमें हम आते हैं और वैकुंठ में कौन रहते हैं, भगवान के प्रेमी भक्त रहते हैं जो भगवान की सेवा करते हैं। तो जब वैकुंठ में आते हैं तो भगवान के भक्तों से संग करते हैं, तो संग में क्या बातें होती है, भगवान के विषय में बातें होती हैं, भगवान के विषय में प्रेरणा मिलती है, भगवान के विषय में पोषण होता है, वो वैकुंठ है। तो इसके लिए जब भी हम भगवान के विषय में कुछ करते हैं कुछ ना कुछ त्याग अपने आप होते रहता है। जैसे अभी आप सो सकते हो, दोपहर का समय है, भोजन करके सो जाओ, हफ्ता भर आपने मेहनत किया है, लेकिन वो आप त्याग करके लेट लंच पाने के लिए यहाँ पर आए हो, है ना, लेट लंच मिलेगा ना, थोड़ी 1 बजे मिलेगा, उसके बाद उसके पहले आपको सत्संग सुनने को मिलेगा, भगवान का दर्शन होगा, भगवान के भक्तों का दर्शन होगा, भगवान के भक्तों के संग में गूंजी हुई भगवान के नाम की ध्वनि सुनाई पड़े सुनने मिलेगी, आत्मा की उन्नति होगी, शुद्धि होगी, और फिर प्रसाद ग्रहण होगा, फिर कीर्तन होगा भगवान के नामों का। तो ये सुंदर दिव्य कार्य करने के पीछे कुछ त्याग है जो आपने किया हुआ है और इसका फल हमें निश्चित रूप से मिलेगा और ये लोगों को मिलना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने इतवार का प्रीति भोज का कार्यक्रम शुरू किया था। आज तक के इस्कॉन के इतिहास में ये सर्व क्या कहते हैं सक्सेसफुल यशस्वी कार्यक्रम है। जहाँ पर भी कभी कभी शनिवार को शाम को होता है, कई देश में अधिकतर संडे को होता है, कभी संडे को सुबह होता है, कभी संडे को शाम को होता है, अधिकतर दोपहर को होता है। तो हम लोग भी जब आप सब लोग आ रहे हैं घर से अपने, तो हमारे गुरु जी हमको बताते हैं कि आपके घर से मंदिर तक आना एक तीर्थ यात्रा है। तीर्थ यात्रा का मतलब क्या, हम जो भगवान की जगह जाते हैं ना, भगवान के स्थान जाते हैं जहाँ भगवान रहते हैं, भगवान के भक्त रहते हैं, तो यहाँ पर भी भगवान रहते हैं, भगवान के भक्त रहते हैं। तो आपके घर से यहाँ पर जो आप रिक्शा से, बस से, गाड़ी से, कार से अपने आ रहे हैं, एक तीर्थ यात्रा है। तो आपको घर से निकलते ही सोचना चाहिए कि मैं तीर्थ यात्रा में जा रहा हूँ, यहाँ पर भगवान का दर्शन करूँगा, भगवान के भक्तों के दर्शन करूँगा, भगवान के लीलाओं के बारे में श्रवण करूँगा और आगे जाकर भगवान की सेवा भी करूँगा। कुछ सेवा मिलेगी, सेवा भी करते रहूँगा, भगवान का प्रसाद पाऊँगा उच्चिष्ट, और संतुष्ट होकर घर जाऊँगा हफ्ता भर काम करने के लिए। इतना सुंदर जीवन है हमारा, बड़े भाग्यशाली हम लोग। जिस व्यक्ति को इस जीवन में भगवान के नाम का परिचय हुआ है, और जिस व्यक्ति को वो अच्छा लगा है, उसको वो थोड़ी रुचि उत्पन्न हुई है, उससे बड़ा भाग्यवान कोई नहीं है। क्योंकि सब लोगों की आसक्ति रुचि जो है दुनिया में लगी हुई है, भोग वस्तु में लगी, विषय वस्तु में लगी हुई है। दिन रात हम चिंतन करते हैं कैसे पैसे कमाएं, कैसे और सुख जोड़ दें, कैसे दुखों को दूर हटाएं, कैसे उसका इलाज करें और कैसे अधिक से अधिक सुख बटोरें। हाँ, इसके लिए हम सब लोग काम करते हैं। ऐसे स्थिति में जब हम भगवान के नाम के प्रति रुचि होती है उत्पन्न हमारे मन में, और उनके प्रति आकर्षित होकर हम अपना कार्य बदल देते हैं, है ना? जैसे अभी सोने का कार्य बदल कर हम भगवान की कथा सुन रहे हैं, ये बड़े ही भाग्य की बात है। मैं ये सब अपने क्यों बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं है सब कुछ, इसलिए बता रहा हूँ कि जब हर एक क्षण जो हम भगवान के सान्निध्य में बिताते हैं, वो ये हर क्षण बिताते समय हमको पता होना चाहिए कि हम कितने भाग्यवान हैं कि ये एक एक क्षण हमें भगवान के सान्निध्य में मिल रहा है। उसके लिए जागरूक रहना, ना, टू बी अलर्ट इज नेसेसरी। बहुत ज़रूरी है कि हम अभी कहाँ हैं, क्या करने जा रहे हैं, उसका महत्व क्या है, उसकी महानता क्या है, उसका लाभ क्या होने वाला है, कैसे हम उत्तिष्ट यानी कि प्रगति करने वाले हैं, इसकी जागृति होना बहुत ज़रूरी है, जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और यही प्रभुपाद जी को हमको सबसे बड़ी दी हुई उनकी द्वारा भेंट है, जो कृपा किया उन्होंने। वो तो चले गए 77 में, लेकिन तब से लेकर अभी उन्होंने दिया हुआ कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई महान आचार्य दुनिया में रहते हैं तो बहुत बड़ी क्रांति हो जाती है, बहुत ऐसे इनकंसीवेबल अनाकलनीय कार्य हो जाते हैं जो हमको समझ में नहीं आता कैसे हो रही है, हाउ इट इज पॉसिबल। लेकिन ऐसे अद्भुत कार्य होते रहते हैं जब वो महान विभूति पृथ्वी पर होती है। लेकिन जब वो चले जाते हैं तो सारे जो उनके नियम जो ढांचा है वो सब निकल जाता है, खत्म हो जाता है। कुछ समय के बाद में फिर वो तितर बितर हो जाते हैं सब कुछ, और डिवाइड हो जाते हैं, और कुछ समय के बाद में फिर नष्ट सा हो जाता है, नाम मात्र रह जाता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी का आंदोलन ऐसा है क्योंकि वो गौरांग महाप्रभु का आंदोलन है जो उन्होंने चलाया है, जो आगे बढ़ाया है, जिन्होंने उन्होंने जितना अद्भुत कार्य किया था अपने 12 साल के जीवन कार्य में, उससे 6 गुना कार्य उनके जाने के बाद हुआ है। हर हर स्तर पर, आप पुस्तक वितरण की बात कीजिए, आप मंदिर निर्माण की बात कीजिए, आप प्रचार की बात कीजिए, आप भक्तों की संख्या की बात कीजिए, हर स्थिति में हर स्तर पर उनका कार्य जो है 6-7 गुना मे 10 गुना बढ़ा हुआ है उनके जाने के पश्चात। जो बाकी संप्रदाय है भारत में, बहुत सारे हमारी मित्रता भी उनसे है, गुरुदेव की मित्रता भी है, प्रभुपाद जी की भी थी, वो लोग कहते हैं कि किसी के जाने के बाद में इतना विस्तार हमने कभी देखा नहीं है, होते समय देखा हुआ है, जाने के पश्चात इतना विस्तार जो है बड़ी अद्भुत बात है। और मध्वाचार्य संप्रदाय जो है ना, वो उडुपी में जो हमारे गांव में, उनके जो सन्यासी होते हैं उनका एक कड़क नियम होता है। वो ऐसा होता है कि समझो मैं सन्यासी हूं, मैं बैठा हूं, तो मेरे 1 मीटर चारों तरफ सिवाय मंदिर के ब्रह्मचारी भक्तों के अलावा कोई बैठ नहीं सकता है, बाकी सब 1 मीटर रेडियस के पीछे आगे। जब सन्यासी चलेंगे तो भी 1 मीटर का जो रेडियस है उसमें केवल उनके ही लोग रहेंगे जो उनको कवर करके रहेंगे, और बीच में वो चलेंगे, बाकी सबको ऐसे तालियां बजा के आगे आगे रोड क्लियर करते हुए वो चलेंगे। मंदिर में भी आएंगे, प्रदक्षिणा करेंगे, तो भी उनका एक ऐसा होता है, आ रहे हैं, कुछ घंटी बजती है, फिर सब लोग हट जाते हैं, फिर वो आगे कुछ लोग आते हैं, फिर उसके पीछे स्वामी जी आते हैं, फिर चल के चले जाते हैं 24 आवर्स। हाँ, हफ्ता भर, महीना भर, साल भर, सालों साल भर वो ऐसे रहते हैं, पूर्णतः सुरक्षा कवच के अंदर रहते हैं, ताकि कोई उनके मन में कोई विकार, कोई आकर्षण, कोई पतन, कोई ऐसा अट्रैक्शन ना हो, और संन्यास आश्रम उनका बना रहे, उनको सुरक्षा देते हैं सब लोग। तो वो हमें ऐसे एक एक, एक महाराज जी हैं, वो बता रहे हैं कि हमें बड़ा आश्चर्य होता है, श्रील प्रभुपाद जी एक तो भारत के संप्रदायों में जो यू नो सांप्रदायिक लोग होते हैं ना भारत के, वो समुद्र पार नहीं करते हैं, वो भारत में ही प्रचार करते हैं। विदेशी लोग आते हैं यहाँ पर उनका सुनने के लिए, लेकिन वो जो समुद्र पार करके जाते नहीं हैं, तो वो कहते हैं कि हम तो भारत में प्रचार करते हैं, भारत भूमि तो भगवान की भूमि है, यहाँ प्रचार करते हैं। और प्रभुपाद जी सात समुद्र पार करके गुरु आज्ञा लेकर परदेश चले गए, सात समुद्र पार करके अमेरिका देश गए। और वहां पर कोई उनको सुरक्षा कवच नहीं था, अकेले गए थे बेचारे, वो कोई असिस्टेंट भी नहीं था, तो एक मीटर क्या एक फुट की भी सुरक्षा कवच नहीं। और लोग समझते कौन बुढ़ा आदमी आया है, बंगाली भाषा उसमें अंग्रेजी बोलता है, अजीब सा उसका कपड़े पहनने का तरीका है। और कैसे लोगों में गए वो, जो लोग शराब पीते हैं, नशा करते हैं, हीरोइन लेते हैं, और उस समय एलएसडी लेते थे, भयंकर द्रव्य लेते थे उस समय, ऐसे मेंटल हेलुसिनेशन होते थे उनके अंदर। और फिर हर एक दिन, हर एक शाम को, हर एक हफ्ते के अंदर एक नई बीवी, नई कंपेनियन, सब जवान बिखरे हुए, सब युवा अवस्था के लोग। फटके हुए युवा अवस्था के लोग आंदोलन कर रहे हैं, कुछ विद्रोह कर रहे हैं ना, रेबेलियस। ऐसे भयंकर स्थिति में जो हो गए, अभी तक भी इतनी स्थिति भारत में आज भी नहीं है जितनी तब थी जब प्रभुपाद जी गए थे। उसमें रहकर उन्होंने कहा कि न केवल वो कंटेमिनेट नहीं हुए, लेकिन सब लोगों को अपने जैसा बनाया उन्होंने जो उनके संपर्क में आए। उनके द्वारा दूषित होने के वजह बजाय उन्होंने उनको अपने जैसा बनाया, ये चमत्कार है। हम लोगों के अंदर तो इतनी सुरक्षा होने पर भी वो कह देते कि सन्यासियों का पतन होता है, कभी कभी वो सन्यास छोड़ देते हैं, विवाह कर लेते हैं। ऐसे कितने लोगों को मैं जानता हूं, क्योंकि हमारा गांव है वो उड़पी। तो उन्होंने बड़ा आदर पूर्वक उनके बारे में बताया कि प्रभुपाद जी सच में महान आचार्य थे। कि तुकाराम महाराज भी कहते हैं महाराष्ट्र में, आपुल्या सारिके करावे सकल जन। संत वो होता है जो उनके संपर्क में आने से लोग उनके जैसे बनते हैं, वो लोगों जैसे बनते नहीं हैं। जो उनके संपर्क में आता है वो उन जैसे बन जाते हैं। ऐसे प्रभुपाद जी थे। और फिर सारे लोगों को उन्होंने ऐसे भक्त बनाया, हृदय में वृंदावन लेकर वो वृंदावन से चले गए, और जहां जहां गए वृंदावन का वातावरण प्रकट किया उन्होंने। उस वातावरण में जो भी आया वो भक्त बन गया उनके जैसा, और फिर सब लोगों को लेकर एक्चुअल वृंदावन में आए। और आज उनमें से 110, 120 लोग स्वयं गुरु हैं, जिनके हजारों शिष्य हैं, देश विदेश की भाषा बोलने वाले लोग हैं। ये बहुत बड़ा चमत्कार है। मैं कुछ समय सऊदी अरब था, मैं कुछ समय विदेश में भी था। एक क्रिश्चियन व्यक्ति को, या जू व्यक्ति को, या एक मुसलमान व्यक्ति को, या अलग अलग जाति के हिंदू धर्म के लोगों को भक्त बनाने में कितना तकलीफ होता है, कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं उसके हृदय परिवर्तन करने के लिए। प्रभुपाद जी को जो मिले, सब लोग एक में भी इसमें हिंदू नहीं था, सब विदेशी और विदेश धर्म के लोग थे। लेकिन प्रभुपाद जी ने उनको प्रेम का संदेश दिया, प्रेम पूर्वक जो भगवान के भजन होता है, भगवान के प्रति जो प्रेम का संदेश है वो दिया। और वो आत्म स्तर पर उनको स्पर्श किया, उन्होंने आत्मा के स्तर पर छुआ उनको, तो उनके प्रेम भरे व्यक्तित्व से सब प्रभावित हो गए। और फिर 30 साल भारत भर प्रवास प्रयत्न करने के पश्चात जिनके पास एक भी शिष्य, एक भी अनुयायी नहीं बना, उनके हजारों अनुयायी बने जब हमारे लोगों ने विदेशी लोगों को आते आकर यहाँ पर भक्त बनते हुए देखा। वो बताते तो वही थे, पहले भी वही बता रहे थे, बाद में भी वही बता रहे थे, लेकिन जब हमारे लोगों ने विदेशी लोगों को पूर्णता समर्पित जीवन बिताते हुए देखा, आंखों से देखा, तो लोग चरणों में गिर गए उनके। तब तक 30 साल पूरा तो उन्होंने 12 साल ही प्रचार किया एक्टिवली, हाँ संन्यास लेने के बाद में, लेकिन उसके पहले 30 साल प्रचार कर रहे थे वो। लेकिन 12 साल में उन्होंने हजारों शिष्य बनाए, 80 किताबों का, लाखों अरबों किताबों का वितरण किया, 108 मंदिर बनाए। हम बड़े भाग्यवान हैं, क्योंकि आज अगर प्रभुपाद जी का ये जो क्या कहते हैं उसको, गिफ्ट हमारे लिए नहीं होती तो हमारा जीवन भी उसी तरह से रहता जैसे पहले था। आज उनके वजह से हमारे जीवन में कुछ अच्छे मूल्य आए हैं, उनके वजह से हमारे जीवन में भगवान का नाम आया है, उनके वजह से हमारे जीवन में अच्छे लोग हमारे जीवन में आए हैं। अच्छों का मतलब क्या है? जो मांसाहार नहीं करते, जो व्यभिचार नहीं करते, लहसुन प्याज नहीं खाते, वो चाय नहीं पीते, वो जुआ नहीं खेलते, हाँ सच बोलते हैं, प्रामाणिक रहते हैं, लोगों के कल्याण के विषय में सोचते हैं, परोपकारी होते हैं, दयालु होते हैं, करुणामयी होते हैं, ऊंचे घराने से अच्छे कल्चर वाले होते हैं, ऐसे अच्छे लोगों का संग उन्होंने हमको दिया। अच्छे लोग वो हैं जो सदाचारी हैं, जो भगवान के विषय में ज्ञान रखते हैं, जिनका आचार शुद्ध है, पवित्र है, जिनके संग में आकर लोगों को प्रसन्नता प्राप्ति होती है, उद्विग्नता प्राप्त नहीं होती है, उद्वेग नहीं होता जिनको मिलने पर, जिनको मिलने पर शांति का अनुभव लोग करते हैं, जिनकी बातें सुनकर तसल्ली का अनुभव करते हैं, ऐसे लोगों के साथ में हमको मिलने जुलने का अवसर प्रभुपाद जी की कृपा से मिला। मैं भी स्वयं जहां पर बड़ा हो गया हूं बचपन में, अभी तो आप लोग हंसेंगे क्योंकि अभी लोग गन मारते हैं ना, अभी गन दूर से बिल्डिंग से गन को मारते हैं। उन जमाने में गुंडागर्दी होती थी तो लोग ट्यूबलाइट फेंकते थे, सोडा वाटर के बॉटल फेंकते थे, पत्थर फेंकते थे, रात को अंधेरे में तलवार चलाते थे। हाँ, ऐसे इलाके में हमारा बचपन गुजरा है। और अगर हम हरे कृष्णा आंदोलन से संपर्क नहीं होता हमारा, तो पता नहीं आज कौन से दुनिया में हम जीते, किस प्रकार के लोगों के बीच में रहते, किस प्रकार की भाषा बोलते, क्या हमारे जीवन का उद्देश्य होता, कैसे हम लोग व्यवहार करते, आई डोंट अंडरस्टैंड। लेकिन इतना जरूर समझता हूं कि बहुत घिलौनी जिंदगी होती, बहुत गंदे लोगों के संग में होती। ये नहीं कि डॉक्टर बनने के बाद सब लोग अच्छे लोगों के संग में रहते हैं। डॉक्टर बनने के बाद भी लोग, आजकल अधिकतर लोग शराबियों के बीच में रहते हैं, मांसाहारियों के बीच में रहते हैं, व्यभिचारियों के बीच में रहते हैं, नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, झूठ बोलते हैं, चीटिंग करते हैं, गंदा काम करते हैं, लोगों को लूटने का काम करते हैं बीमारी के आधार पर। यही माहौल है। जब मिलते हैं तो शराब पीते हैं और रम पीते हैं, विस्की पीते हैं और स्क्वाच पीते हैं। तो डॉक्टर होने पर कोई आदमी ऐसा उन्नत नहीं होता है। डोंट थिंक कि इंजीनियर बनने के बाद में बड़ा उन्नत हो जाता है, डॉक्टर बनने के बाद में बड़ा प्रगति करता है, ऐसा नहीं होता है। प्रगति तो आत्मा के स्तर पर होती है, सदाचार के स्तर पर होती है, और सही उन्नति केवल एक भक्ति कर सकता है, क्योंकि वो जानता है कि हम कौन हैं, खुद को पहचानता है वो। अगर MBBS करेंगे, MD करेंगे, PhD करेंगे और खुद को ही नहीं पहचानेंगे तो क्या लाभ है उसका? वी डोंट नो हु वी आर, तो कैसे प्रगति हुई? वो प्रगति तब होती जब हम जानते हैं कि हम कौन हैं, क्या नहीं है, हम शरीर नहीं है, वो कौन है, उनका हमारा क्या रिश्ता है, और उस रिश्ते को कैसे बढ़ा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, संबंध कैसे कर सकते हैं, हाउ टू कनेक्ट, तब उन्नति होती है। नहीं तो बाकी उन्नति जो होती है ना, उसको यही छोड़ के जाना पड़ता है। बहुत पैसे कमा लिए तो यही छोड़ के जाना होता है, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी बना लिया तो सब छोड़ के जाना होता है। लेकिन इस स्तर पर जो उन्नति करता है, सारी उन्नति अपने साथ लेके जाता है, क्योंकि जो आत्मा के साथ होता है वो आत्मा के साथ जाता है, जो आत्मा के साथ नहीं होता है वो शरीर के साथ यहीं पर नष्ट हो जाता है या छोड़ के जाना पड़ता है। ऐसे हमारे प्रभुपाद जी, उन्होंने ग्रंथ लिखे, रात रात को जाग कर, जब दुनिया सोती थी, दिन भर भोग लेकर रात को सोते थे लोग, तो प्रभुपाद जी जगते थे और ये किताबों को लिखन करते थे। आज हमारे बीच में शरीर से नहीं है वो, ऐसे ध्वनि के वाणी से नहीं है, लेकिन लिखित वाणी से रूप में, इस किताबों के रूप में उपस्थित है वो। आज भी लोगों को संग दे रहे हैं वो। हमने दर्शन तो नहीं किया उनका, लेकिन रोज दर्शन करते हैं उनका, उनके विचारों के माध्यम से, उनके विचारों के संग से। और ये हमारा भाग्य है, क्योंकि साधु जो होता है ना, वैष्णव, उसका देहांत नहीं होता है कभी, वो कोई मर नहीं जाता है, वो चिरंतन काल के लिए जीता है, अपने उपदेशों के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से, अपने प्रस्थापित किए हुए आदर्शों के माध्यम से वो जीवित रहते हैं। और वैष्णवगण अपने शरीर से होने से या शरीर के जाने के बाद में भगवान के और भगवान के धाम को हमेशा प्रकाशित करते रहते हैं। दे ऑलवेज ब्रॉडकास्ट द सुप्रीम लॉर्ड एंड हिज अबोर्ड। तो ऐसे ही श्री वृंदावन धाम उन्होंने अपने हृदय में ग्रहण करके वो विदेश गए थे। एक सच्चे ब्रजवासी थे वो। मैं कई साल ब्रज में रह चुका हूं और कुछ उन लोगों को जानता हूं मैं, अभी कुछ लोग नहीं रहे, कुछ रहे, बुजुर्ग लोग थे वो। वो कहते थे कि जब प्रभुपाद जी 3-4 साल वृंदावन में रहकर श्रीमद् भागवत भगवद गीता का अनुवाद प्रथम स्कंद का करके जब निकले, तो बहुत सारे ब्रजवासी जो पक्के साधु थे वहां के, उन्होंने उनको कहा था कि क्यों जा रहे हैं आप, इस उम्र में ब्रज छोड़ के कोई जाता नहीं है, सब कुछ छोड़ के ब्रज में आते हैं इस उम्र में, पता नहीं कब क्या हो जाए, शरीर छूट जाए तो ब्रज के अंदर छूटना चाहिए, इसलिए लोग सब कुछ छोड़ के खड़कर ब्रज में आके बस जाते हैं। और आप इस उम्र में जब आप कभी भी कुछ भी हो सकता है, तब आप ब्रज छोड़ के बाहर जा रहे हो नंबर वन, और नंबर वन भारत छोड़ के सात समुद्र के परे जा रहे हो विदेश में, जहां पर जाना नहीं चाहिए बिल्कुल, आपको ऐसी जगह जा रहे हैं जब नरक है वो पूरा। नरक मतलब ऐसा नहीं कि वहां पर केवल कोड़े पड़ने चाहिए, पत्थर तोड़ने की नौबत आनी चाहिए, उसको नरक नहीं कहते हैं। जो भगवान को भूलकर भोग लेते हैं उसको नरक कहते हैं। चाहे पर सुख सुविधा बहुत बढ़िया हो, साफ रोड हो, सुंदर शरीर हो, सुनहरे बाल हो, नीली आंखें हो, ऊंचा कद का शरीर हो, बहुत धन दौलत हो, बहुत सुख सुविधा हो, बहुत सब बटन के आधार पर सब कुछ उपलब्ध हो, तो हमको तो लगता है कि स्वर्ग है, कब जाएंगे वहां पर, कब उसका नागरिक बनेंगे, सिटीजन बनेंगे। लेकिन जब भगवान वहां पर नहीं है, सदाचार नहीं है, चेतना दूषित है, तो वही नरक है। तो प्रभुपाद जी को उन्होंने कहा क्यों जा रहे हैं आप, फिर भी प्रभुपाद चले गए, तो बहुत लोगों ने उनकी निंदा किया, ये साधु नहीं है, इसको तो साधु का जो साक्षात्कार है वो पता नहीं है, तो ऐसे ही। लेकिन 12 साल 14 बार विश्व का भ्रमण किया उन्होंने, और फिर हजारों शिष्य बनाए, सैकड़ों मंदिर बनाए, लाखों किताबों का वितरण किया, लोगों का जीवन परिवर्तन किया, एक क्रांति लाई उन्होंने, आध्यात्मिक क्रांति, जो पिछले आचार्यों ने भविष्यवाणी की थी वो उन्होंने सच करके दिखाई। फिर वो ब्रज लौटे और अपने हजारों विदेशी भक्तों को लेकर लौटे, जो भी एक चमत्कार था। हाँ, लोग कहते हैं कि अरे आकाश में से जो विभूति निकालता है वो बड़ा चमत्कारी साधु है, आकाश में से घड़ी निकालता है, आकाश में सोना निकालता है, स्वर्ण, वही चमत्कारी साधु है, वो भारत का गौरव तो वही है। प्रभुपाद ने कहा था ये देखो, ये विदेशी लड़के और लड़कियां, ये सब मांसाहार, जुआ, नशा, व्यभिचार सब करते थे, आज एक फर्स्ट क्लास ब्राह्मण वैष्णव बन गए हैं, यही चमत्कार है, हृदय का परिवर्तन ये सबसे बड़ा चमत्कार है जो उन्होंने किया। तो ये सब करके लौट के आए उन्होंने वो, और ब्रज में ही रहकर आखिरी सांस तक श्रीमद् भागवत का अनुवाद करते 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 उन्होंने वृंदावन के रमण रीति धाम में अपना शरीर छोड़ दिया। हमने देखा है, आप भी देख सकते हैं वो वीडियो को, शरीर एकदम केवल चर्म और हड्डी है बस, लोग उनको आंखों की पलके भी उनकी उठाकर लोगों को दिखाते थे, प्रभुपाद जी देखो कौन मिलने आया आपको, ऐसे करके दोनों पलके उठाते थे और वो देखते थे, पलके भी उठाने का उसमें शक्ति बची नहीं थी, हाथ उठाना दूर ही रह गया, पलके भी नहीं उठती थी। इतने जर्जर अवस्था में पहुंचने के बाद भी उनके मुंह पर डिक्टेफोन रखते हुए भक्त लोग उनको श्लोक सुनाते थे, वो श्लोक का वो वर्ड टू वर्ड अनुवाद करते थे और एक सेंटेंस में अनुवाद लिखते थे, उसके बाद तात्पर्य भी लिखते थे, और भी एकदम स्पष्ट चेतना में, ऐसा नहीं कि वो डिलीरियम में है और थोड़ा सा भ्रम में है, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, ऐसा नहीं, क्लियर। आप पढ़ सकते हैं ब्रह्म सम्मोहन लीला जो है, वहां तक उनका जीवन रहा है, और उसके बाद में फिर उनके शिष्यों ने उनका भागवत का कार्य पूरा किया है। अब जहां तक उन्होंने किया है वो पढ़ी है उसको आप, हालांकि पूरी ब्रह्म सम्मोहन लीला जो है वो, पूरी ब्रह्म सम्मोहन लीला जो है वो उन्होंने उसी ये क्या लिखा है, पूरी की सेवा के लिए कुछ माताएं पीछे चली जाए, ऐसा इधर संदेश आया है, हरे कृष्णा। तो ब्रह्म सम्मोहन लीला जो भी अनुवादित की गई है, तात्पर्य लिखा गया, वो पूरी उसी अवस्था में लिखा गया था, जब 3.5 महीना तक उन्होंने जलपान भी नहीं किया था, भोजन तो दूर ही रहो, जलपान भी नहीं किया था, सब कुछ छोड़ दिया था, और 3.5 महीना फिर भी ऐसे चेतना में जीवित रहे वो, और जिस तरह से वो अनुवाद कर रहे हैं, जिस तरह आप देखेंगे तो आपको आंसू आएंगे आंख में। कोई नहीं कहेगा उनको, महाराज जी आप अनुवाद करना छोड़ दिए, जिंदा तो हो ना, बोलो ना आप, ऐसा कोई बोलने वाला नहीं था उनको, अगर नहीं भी करते तो बोलते महाराज जी इतने अभी बूढ़े हो गए क्या करेंगे बेचारे। लेकिन फिर भी वो आखिरी सांस तक कहते हैं ना, हम लोग खाली फिल्मों में कहते हैं, कविता में कहते हैं, आखिरी सांस तक मैं साथ दूंगा, आखिरी सांस तक जीवन समर्पित करूंगा, ऐसे हम गीत बनाते और गाते हैं उसको, तालियां भाई वाह 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 ऐसे भी सुनते हैं, लेकिन वास्तव में उन्होंने आखिरी सांस तक भगवान का सेवा किया है, हम सब लोगों की सेवा की है। तो वो ब्रह्म समोह लीला के बारे में आज हम कुछ चर्चा करेंगे, जो प्रभुपाद जी ने सबसे आखिरी उसका अनुवाद किया है। जैसे कहते हैं ना, फ्रॉम द डेथ बेड, मृत्यु शैया के ऊपर से उन्होंने ये लीला का अनुवाद किया था। तो इसके पीछे पार्श्वभूमि ऐसे वृंदावन धाम किया। तो मैं क्या कह रहा था, जब वो 14 नवंबर 1977 में जब उन्होंने शरीर छोड़ा उस जगह पर, अपने सारे प्रामाणिक भक्तों के बीच में उनके मुख से आंखों से आंसू आते हुए किया हुआ कीर्तन, उसके बीच में अपने गुरु महाराज का दर्शन करते हुए उन्होंने शरीर छोड़ के वो गौलोक धाम चले गए। तब जाकर जिन दिन वैष्णवों ने उनके बारे में कहा था कि ये तो साधु नहीं है, ये तो उनको ज्ञान नहीं है, पता नहीं कैसे साधु है, ये विचित्र साधु हैं, उन्होंने कहा ये सच्चे ब्रजवासी हैं। क्योंकि न वो ब्रज के बाहर ब्रज छोड़कर नहीं गए, वो ब्रज को हृदय में लेकर गए, जहाँ जहाँ गए ब्रज को बसाया, उन ब्रज में बहुत लोगों को लिया, उन लोगों को फिर बाद में असली ब्रज में लेके आए और ब्रजवासी बना दिया। वो सच्चे ब्रजवासी हैं। चार प्रकार के ब्रजवासी होते हैं। एक ब्रजवासी होता है वो वहां जन्म लेता है, भाग्य है उसका, बहुत राधा रानी कृपा है उसके ऊपर। दूसरा ब्रजवासी वो है जो बाहर जन्म लेता है हमारे तुम्हारे जैसा, लेकिन वहां जाके बस जाता है, एक घर लेता है, कोई झोपड़ी लेता है, वहां पर अपना जो भी है सेविंग वगैरह वहीं पर रह जाता है, भजन पूजन करता है। तीसरा ब्रजवासी वो है, वो जैसे हम यात्रा करते हैं ना, 10 दिन की, 15 दिन की, 2 दिन की, 1 दिन की, जो भी 15 दिन की, महीना भर की, कार्तिक महीने में यात्री है वो, फिर भी वो ब्रजवास कर रहे हैं, वो ब्रजवासी है। और चौथे प्रकार का व्यक्ति वो ब्रजवासी है जो ब्रज में रहता नहीं है, लेकिन ब्रज की चेतना में बाहर रहता है, हमेशा ब्रज की याद में रहता है, कभी भूलता नहीं है भगवान को, कभी ब्रज की लीलाओं को भूलता नहीं है, उसकी चेतना, उसका विचार, उसकी भावना हमेशा ब्रज में रहती है। और प्रभुपाद जी ऐसे ब्रजवासी थे, शरीर से बाहर गए लेकिन चेतना से, आत्मा से हमेशा ब्रज को साथ में लेके गए और ब्रज में ही रहे, लोगों को ब्रज का संग दिया, लोगों को ब्रज का प्रेम अनुभव दिया और लोग आकर्षित हुए और वो भक्त बने, और आज आपके सामने ये माहौल प्रस्तुत है उनके कृपा से। तो ये ब्रज ब्रह्म एवं विमोहन लीला जो है, इसका पार्श्वभूमि ऐसी है कि संक्षेप में आपको बताते हैं, जो वेद है ना, वेद वेद जो है वो भी देवता हैं। हर एक व्यक्ति, हर एक जो वस्तु है, जो पहाड़ है समझो, नदी है, समुद्र किनारा है, या कुंड है, स्थान है, वो सब व्यक्ति होते हैं और वो भक्त होते हैं और भगवान के, और वो भगवान की सेवा में वो पर्वत बनकर या कुंड बनकर या नदी बनकर उनकी सेवा करते हैं। सर जमुना देवी है, वो नदी बनकर उनकी सेवा करती है। राधा कुंड जो है वो अनेक संतों का समागम है, वहाँ पर 68,000 तीर्थ वहाँ एकत्र हुए हैं राधा कुंड को निर्माण करने के लिए। तो वैसे वेद भी भक्त हैं भगवान के। तो देवी रूप बनकर वो एक बार भगवान के पास गए, बड़े दुखी थे, वो कह रहे थे कि हमारे अंदर तो भगवान का अप्रत्यक्ष वर्णन दिया गया है, इनडायरेक्ट मेंशन, प्रत्यक्ष रूप से हम भगवान को अनुभूति हमारे पास नहीं है, तो हमारा उद्धार कैसे होगा, हम तो वेद रूपी ज्ञान जिसके द्वारा आपको ही समझना है लेकिन बहुत क्लिष्ट है वो समझना, वो हम दे रहे हैं लेकिन हमारा उद्धार कैसे होगा। तो बहुत प्रामाणिक भावना से भगवान के सामने गिड़गिड़ाए, तो भगवान ने उनको क्या किया, गौलोक का कुछ समय का दर्शन दिया। यहीं पर तो गौलोक में उन्होंने गोपियों को देखा, वो इतने प्रेम से भगवान की सेवा कर रहे हैं, इतना समर्पित भाव, इतना प्रेम, तो बड़े आकर्षित हो गए। तो उन्होंने कहा कि हमको भी ऐसा जीवन चाहिए आपकी सेवा में, इतना प्रेम भरी सेवा आप करते हैं, वो तो हमको भी वो जीवन चाहिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं जब कृष्ण अवतार लेकर आऊँगा तो आप नंदगांव में गोपियाँ बन जाना, जो नंदगांव में जितने भी ग्वाल बाल हैं उनके घर में आप कन्या बनकर जन्म लेना। तो सारे वेदों का, जितने भी वेद हैं, जितने भी वेद के उपांग हैं, वो सब देवियां जो है वो कन्या गोपी बनी सब नंदगांव में, और छोटी छोटी गोपियां जो थी यशोदा मैया की सेवा करती थी कृष्ण की सेवा करने के लिए, कृष्ण की सेवा में उनका हाथ बटाती थी। आप देखते हैं ना, देखो नंद बाबा को कृष्ण भगवान चप्पल लेकर भाग के मिलने को आ रहे हैं, तो वो चित्रपट में पीछे से कुछ सखियां खड़ी हैं ऐसे, हाथ में थाली लेकर, उसमें दीपक है, मिठाई है, फूल है, और देख रहे हैं ऐसे, और कृष्ण भगवान लौट के आ रहे हैं, फिर उनकी आरती उतारते हैं वो। ऐसे राधा रानी, सॉरी, नंद बाबा के घर पे यशोदा मई के नेतृत्व में वो सेवा करते हैं। तो उन्होंने काफी सेवा करके अपने आत्मा की उन्नति कर ली। फिर यमुना देवी से उनका मुलाकात हुई और यमुना देवी की मुलाकात में उन्होंने अपना हृदय का मंतव्य प्रकट किया कि हमको कृष्ण से विवाह करना है, वो हमें पति रूप में चाहिए। तो यमुना देवी ने उनको कात्यायनी व्रत का वर्णन दिया। आज जो समय चल रहा है ना, कार्तिक पूर्णिमा के बाद केशव मास चल रहा है ना, कार्तिक दामोदर मास के बाद, तो ये महीने में कात्यायनी व्रत शुरू होता है। कार्तिक वद्य प्रथमा प्रतिपदा से लेकर एक महीने तक गोपियों ने कात्यायनी व्रत किया था। तो यमुना देवी ने ये कात्यायनी व्रत गोपियों को, वो उन गोपियों को बताया था। तो वो गोपियां कार्तिक शुद्ध प्रतिपदा प्रथमा के दिन से रोज नंदगांव से निकलती थी और यमुना किनारे बैठकर बालुका के द्वारा कात्यायनी देवी का विग्रह बनाकर पुष्प हविष्य फल फूल से उनकी सेवा करते थे और खुद व्रत में रहते थे। केवल हविष्य दिन में एक बार पाते थे। हविष्य का मतलब है कुछ धान्य होता है, चावल और काले तिल का, जो बिना नमक बिना मिर्च बिना तेल किसी भी तरह से कुछ भी नहीं, केवल पानी में उबाल के उसको पाते थे, उसको दिन में एक बार। बहुत कर्रा व्रत रखते थे। और आप जानते हैं इस महीने में शुरुआत में तो कम ठंड होता है, तो कार्तिक महीने के बाद में जब एक महीना गुजरता है तो काफी गहरी ठंड पैदा होती है। और आप लोग भी जानते हैं कि यहाँ पर ठंड कम है, एवरेज में ज़्यादा ठंड ज़्यादा होती है। लोग भी कहते हैं वृंदावन मथुरा में ज़्यादा ठंड होती है यहाँ से। तो उन्होंने इतनी चढ़ती हुई ठंड में बहुत कड़ी तपस्या की, रोज ठंडे जल में स्नान करना जमुना जी के, दिन भर जमुना जी किनारे बैठकर ध्यान लगाना, कात्यायनी के पूजन करना एक ही भाव से कि हमें कृष्ण पति मिले। 33 दिन जब पूरे हुए तो श्री कृष्ण भगवान, ये लोग लास्ट दिन जब अपना व्रत पूरा करने के लिए स्नान कर रहे थे अपने वस्त्रों को उतार कर, तो कृष्ण भगवान वहां प्रकट हो गए, सबके वस्त्र उन्होंने छीन लिया, वहां पे सबको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, विवाह रूप में नहीं भाव रूप में। और इन गोपियों को पांचवें दिन, उन्होंने उस दिन के पांचवें दिन उनको बंसीवट के रास में प्रवेश दिया उनको। ये एक कथा है उनकी कात्यायनी व्रत वाली, क्योंकि कात्यायनी चल रहा है इसलिए मैं आपको बताया। लेकिन जब राधा रानी की कृष्ण के साथ सगाई होने की बात चली, उन्होंने हल्दी लगाई है ना, तो फिर बात फैल गई सब जगह पे और सब गोपियों को कृष्ण के साथ विवाह करने का मन था। लेकिन पूर्णमासी देवी जो है ना, वो पार्वती का अवतार है और वो यशोदा माई जैसे बड़े देव गोपियों की गुरु है वो। तो जब ही इनकी सगाई की बात चली ऐसे पूरे ब्रज में, तो उन्होंने पूर्णमासी के पास जाकर पूछा कि कुछ मुहूर्त निकालो, अच्छा आप तो बड़ी पंडिता हैं। तो उन्होंने देखा, वो जानती थी ना, वो तो बहुत बड़ी 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 भक्त है भगवान की, वो जानती थी कि ब्रज का जो है परकीय भाव है, यहाँ पर शादी करके मिलेंगे रहेंगे तो फिर वो छुप छुप के मिलना, इशारे करना, कोयल बन के मिलना, फिर यहाँ पर मिलना वहाँ पर मिलना सब खत्म हो जाएगा। वो द्वारका में तो स्वकीय भाव है, वो सब जो भी आती है पत्नी बनकर घर घर में रहती है, कोई छुप छुप के मिलने की जरूरत नहीं होती, महल में रहते आराम से ऑफिशियल। तो ये तो परकीय भाव का स्थान है। तो उसने कहा कि अरे जो आकाश में तारे बैठे हुए हैं वो गलत जगह बैठे हुए हैं, कोई तारा मंडल जो है वो सही स्थिति में नहीं है, शुभ स्थिति में नहीं है, तो ये विवाह करने की अच्छी घड़ी नहीं है। तो उन्होंने सब लोगों का जो उभरता हुआ भाव था उसको फेल कर दिया, उन्होंने कि नहीं होना है विवाह। तो सारी गोपियां, राजा रानी सारी गोपियां नाराज हो गई कि भाई अरे अच्छा मौका था, सबके मुहूर्त निकलते हो जाता कुछ। तो उसके बाद भी कुछ गोपियों ने कात्यायनी व्रत किया है उनको पाने के लिए, जो नाराज हो गई थी जो डिप्रेस हो गई थी उन्होंने भी कात्यायनी व्रत किया है। तो ये कात्यायनी व्रत को फल देने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने लीला किया, जिसको हम ब्रह्म विमोहन लीला के रूप में मानते हैं जानते हैं। तो संक्षेप में ब्रह्मा जी आए, उन्होंने सुना कि अगासुर का वध हुआ। अगासुर तो बहुत भयंकर राक्षस था जिसके भय से देवता भी कांपते थे, दूर 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 छुपकर बैठे हुए थे। उस अगासुर को एक बालक ने मार दिया ऐसा उन्होंने सुना पृथ्वी पर, और देवता ने आके उनको बताया कि महाराज वो हमारे भगवान है, वो भगवान पृथ्वी पर अवतार लेकर लीला कर रहे हैं। तो उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, जिनके द्वारा हम सब भयभीत हैं उसको एक बालक ने मारा, वो उनको वो बालक ही भगवान है, ये दोनों बात समझ में नहीं आई उनकी। तो उन्होंने कहा कि क्यों बहस करना है, हम तो आके हम जाकर आंखों देखा हाल देखेंगे तो फिर समझ में आएगा। हाँ थोड़ा बालकों को संभाली जरा। तो ब्रह्मा जी अपने हंस पर आए, उस समय देख रहे थे कि बालक सब लोग बैठे हुए हैं कमलाकार सुंदर अवस्था में, अपना अपना टिफिन खोल रहे हैं और ठाकुर जी भी अपने मुंह से कुछ खाकर उनको खिला रहे हैं, वो भी अपने कुछ मुंह से चक्कर उनको खिला रहे हैं। ऐसा आनंद चलता रहा बहुत देर तक, सब लोग बड़ी उत्सुकता, देखो देखो कन्हैया मेरे माँ ने क्या दिया है, वो कुछ खाकर देख रहे हैं ये बहुत बढ़िया है स्वादिष्ट है, वो उनको खिला रहे हैं, फिर वो अपने मुंह से खिला रहे हैं, और कोई खिला रहे हैं, सब लोग इस अहमहमिका में है, इस कंपटीशन में है कि मेरे मैया ने बहुत सुंदर खाना बनाया है वो तुम खाना चाहिए। भगवान भी बड़ी आतुरता से खुद के मुंह का लोगों को दे रहे हैं, लोगों के मुंह का खुद खा रहे हैं, इतना प्रेम है भगवान का। जो अनेक सुक्तों के वर्णन करने के बाद में उनको भोग लगता है फिर सब लोग पाते हैं उसको, वो ऐसे बिना कोई मंत्र मंत्र बोले वो जूठन खा रहे हैं सबकी। ब्रह्मा जी को तो और लगा कि ये तो सच है ही नहीं, उन्होंने कहा था लेकिन ये भगवान नहीं हो सकता है, अरे हम तो इतनी नियम से उनको भोग लगाते हैं ये तो भगवान कैसे हो सकता है, तो जूठन खा रहा है, वो भी ग्वाल बाल वैश्य लोग जो गाय चराते हैं गोबर में खेलते रहते हैं, ऐसे लोगों के हाथ का जूठन खा रहा है, फिर भी उनको बताया गया था कि भगवान है, तो थोड़ा सा टेस्ट कर लेते उसको, तो अपनी शक्ति के द्वारा उन्होंने बैठ कर खा रहे हैं ना सब लोग ऐसे आराम से, तो उनकी गाय थोड़ा दूर दूर ऐसे बछड़े चर रहे हैं इधर उधर, सब बच्चों को छीन लिया उन्होंने, सम्मोहित कर लिया, हिप्नोटाइज कर लिया और ब्रह्मा लोक में जाकर छुपा दिया उनको, उनके लिए तो कोई दूर का अंतर नहीं था, वो जैसे जाके आगे खट से। और कुछ समय बाद उन सब बालकों को ध्यान में आ रही हमारे बछड़े कहाँ गए, लेकिन सब लोग खाने में बहुत मग्न थे उस समय, ऐसा सब टिफिन खुले हुए हैं और वो सब ऐसा आनंद ले रहे हैं, तो ठाकुर जी ने कहा कोई बात नहीं आप बैठे रहो आप आनंद में भंग मत करो, हम जाके देखते हैं, देखो ठाकुर भगवान हमारे कैसे भगवान अपने भक्तों के सेवक हैं, ऐसे नहीं बैठे हुए ए जा रहे सुबल तू देख क्या मधुमंगल तू इस तरफ जा, जाते थे वो उनके मित्र हैं वो बड़ा प्रेम करते हैं उनसे, लेकिन कह रहे आप खेलते रहो आप अपने आप को डिस्टर्ब मत करो मैं जाके देख के आता हूँ। और जब गए ये बालकों को देख बछड़ों को देखने के लिए तो उनके चरण चिन्ह जो है वो कुछ समय तक दिखाई पड़ रहे उसके आगे गायब हैं, यहाँ से गए तो कुछ आगे दिखाई पड़ रहे वहाँ से आगे गायब हैं, उधर गए तो उधर से आगे गायब हैं, समझ गए कि ब्रह्मा जी कुछ लीला कर रहे हैं। लौट कर आए देखने के लिए अपने मित्रों को तो सब मित्र भी गायब हैं, क्योंकि जब ये गए बछड़ों को देखने के लिए तो ब्रह्मा जी ने सभी ग्वाल वालों को उठा लिया उनको हिप्नोटाइज किया सम्मोहित किया और उनको भी छोड़ के आए, और उनके एक क्षण के बाद लौट के आए, आफ्टर अ मोमेंट ही केम बैक, तो क्या देखते हैं सब बछड़े वही हैं चल रहे हैं अपने आप, सब ग्वाल बाल वहीं बैठे हुए हैं अपने पोजीशन में बैठे हुए थे, कृष्ण भी वैसे ही बैठे हुए हैं खा रहे हैं मजाक कर रहे हैं हंस रहे हैं डोल रहे हैं, वो समझ में नहीं आना कुछ बड़ा छलिया आदमी है ये, हाँ पता नहीं कुछ रूप बदल लिया होगा उसने। दोबारा गए ब्रह्मा लोक में देखा सब लोग वहाँ सो रहे हैं जिनको सम्मोहित किया था वो बछड़े और ग्वाल बाल सब वहाँ सोए हुए हैं, फिर लौट के आए देखा फिर बैठे हुए हैं नीचे, क्या क्या हो कह रहा है हा? हमारे ये जो स्कल है ना स्कल इसके अंदर एक दिमाग है ना दो हिस्से वाला, ब्रह्मा के कितने हैं चार दिमाग उसमें अंदर दो दो हिस्से वाले आठ आठ आंखें, और बाय द वे पूरे यूनिवर्स का ब्रह्मांड का सबसे प्रगत मस्तिष्क है वो सबसे प्रगत दिमाग है वो, उस पर सारा प्रोग्राम बना हुआ है ना पूरे यूनिवर्स के निर्माण का सारी इंफॉर्मेशन सारा सॉफ्टवेयर बसा हुआ है उधर, उनके ही विचार से बुद्धि से विसर्ग होता है, सर्ग भगवान करते हैं विसर्ग वो निर्माण करते हैं, यानी कि दुय्यम सृष्टि यानी कि सेकेंडरी क्रिएशन वो सारा वो निर्माण करते हैं। अरे हम सब उनके बेटे हैं एवरीबडी, हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर हैं पिता पितामह हैं वो, ऐसे व्यक्ति का दिमाग कितना तेज कितना प्रगल्भ होगा, और ऐसा दिमाग धीरे धीरे भ्रमित होने लगा, समझ में नहीं आ रहा है कैसे मुमकिन है ये छोटा सा बालक है, लेकिन कई बार गए ऐसे कहते हैं कुछ शास्त्र में लिखा है कि गए आए और भ्रमित हो गए, कुछ में लिखा है कि कई बार अप डाउन किया उन्होंने, क्योंकि शायद मैं आता हूं तब वही लोग आते होंगे शायद यहां पर, और यहां पर मुझे कुछ नजारा दिखा रहे हैं, और मैं जब जा रहा तो मेरे साथ अदृश्य रूप में जाते होंगे वहां पर सोते हुए दर्शन देते होंगे ऐसा उनको लगा, तो वो समझ में नहीं आया उनको, वो जब भ्रमित पूरे हो ही गए थे, उनके भ्रम में और बढ़ोतरी वृद्धि करने के लिए अचानक भगवान ने सारे बछड़ों को, सारे ग्वाल बालों को और स्वयं को चतुर्भुज विष्णु बना दिया। अब तक तो एक एक ही थे, फिर सब चार भुजा वाले बन गए। और उस भ्रम में और बढ़ोतरी करने के लिए क्या किया उन्होंने, हर एक विष्णु के पास 33 करोड़ देवता पूजन कर रहे हैं उनका। शारदा माधव भगवान की, हर एक विष्णु के साथ में 133 करोड़ देवताओं का सेट उनका गौरव पूजन कर रहा है। मतलब अभी एक थे, अभी एक के पास 33 करोड़, क्या क्या दर्शन होगा वो, जस्ट इमेजिन। उसके बीच में कृष्ण खड़े हैं, तो पूरी तरह भ्रमित हो गए, कंप्लीटली बिविल्डर्ड, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या चल रहा है। उस भ्रम में और वृद्धि करने के लिए एक क्षण में सब गायब कर दिया उन्होंने, एवरीबॉडी फिनिश्ड। और वो हाथ में ऐसा थोड़ा दही चावल लेकर ढूंढ रहा है, मेरे दोस्त कहाँ गए, मेरे बछड़े कहाँ गए, पता नहीं अभी थे कहाँ गए, ऐसे भ्रमित बालक दिखाई पड़ा उनको। तब ब्रह्मा जी में ये साक्षात्कार हुआ कि अरे मैं जिसके साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ अपने आप को, हाँ वो आई एम डीलिंग विथ, ये साक्षात परब्रह्म भगवान है, लीला पुरुषोत्तम गौलोकेश्वर है, मेरे स्वामी है, मेरे पिता है, जिनके गर्भ नाभि से मैं जन्म ले चुका हूं। तो तुरंत अपने चार मुख वाले सर से दंडवत प्रणाम किया उन्होंने, बहुत ज्यादा उन्होंने माफी मांगी भगवान की, बहुत गुणगान किया। और फिर भी भगवान ने ऐसे अलग अलग जगह पर अलग अलग कल्प भेद लिखा हुआ है, ऐसे कहते हैं कि भगवान के पास माफी मांगने के पश्चात भी ब्रह्मा जी को पूरी माफी नहीं मिली, तो भगवान ने उनको कहा कि तुमको ब्रज की दंडवती परिक्रमा करनी चाहिए, तब जाकर तुम्हारा ये पाप धुलेगा, क्योंकि तुमने मेरी लीला में भंग डाला हुआ है। मैं लीला कर रहा था मेरे ग्वाल वालों के बछड़ों के साथ, तुमने उसको हमको अलग कर दिया, वियोग में डाल दिया, हाँ दोनों को। तो ब्रज रज की आश्रय प्राप्त किए बिना तुम इस पाप से मुक्त नहीं हो सकते। फिर ब्रह्मा जी ने पूरे ब्रज की दंडवती परिक्रमा की है 84 कोस की, वो पूरे काले हो गए थे, और जब दंडवती करने लगे तो धीरे धीरे उनका तेज वापस आने लगा, दंडवती पूरा किया तो पूरी कृपा प्राप्त हो गई। ये एक हिस्सा है उस लीला का। दूसरा हिस्सा ऐसा है कि जब वो पूरी कृपा प्राप्त कर चुके, फिर भी उनका पश्चाताप जो है ना वो पूरा समाप्त नहीं हुआ, उनको उनको लग रहा था कैसा मैं व्यक्ति हूँ, एक तो ब्रह्मा के पोजिशन में हूँ, क्या नहीं है भाई, आपको अगर प्रगति प्रगति करनी लाइफ में तो ब्रह्मा इज द हाइएस्ट पोजिशन, द हाइएस्ट CEO, हाँ आपको क्या उसके आगे और कोई पोजिशन ही नहीं है पूरे ब्रह्मांड में, वो उस व्यक्ति को प्राप्त है। जितने भी जीव यहाँ चरते हैं वो सब उसके उनके ही बेटे हैं, चाहे सांप हो या बिल्ली हो, चाहे पंछी हो या मछली हो या पेड़ हो, सब उनका क्रिएशन है, कीटक हो कोई भी हो, हर चीज उनके द्वारा निर्मित है। इतनी पावर है उनके पास, इतना अधिकार है, सब देवता डरते हैं, हाँ सब राक्षस लोग जो है ना वो इधर उधर झगड़ा करते, लेकिन ब्रह्मा और शिव जी से कुछ मोल नहीं लेते हैं। उसमें से एक ब्रह्मा है, एक दुर्गा देवी, एक ब्रह्मा, एक शिव जी, इनके पास कोई झगड़ा नहीं करते। देखो उनके पास वरदान देने जाते हैं शिव जी के पास और ब्रह्मा जी के पास, तपस्या करके उनको प्रसन्न करते हैं। उनमें सबके पिताजी ब्रह्मा हैं, भले महादेव महादेव जी हैं, ब्रह्मा जी उनका पूजन करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी उनके भी पिता हैं। तो वो सोच रहे हैं कि ऐसा बड़ा पोजिशन होने का क्या फायदा है अगर मेरे भगवान को मैं पहचान नहीं सकता हूँ, वट इज द यूज, इतनी बुद्धि, इतना हाईएस्ट डेवलप ब्रेन मुझे दिया है, इतना अधिकार, इतना सॉफ्टवेयर, इतना सब कुछ अधिकार दिया हुआ है, उसके बावजूद भी वो पद के अहम की वजह से अगर मेरे प्राण प्रिय प्राणेश्वर भगवान को मैं पहचान नहीं सकता हूं, तो क्या लाभ है उस ब्रह्मा पोजिशन का, नहीं चाहिए मुझे ब्रह्मा पोजिशन। बड़ा रो रो के गिड़गिड़ाते हैं भगवान के पास कि मुझे नहीं चाहिए ब्रह्मा जी का, तो भगवान माफी करते हैं उनको, वो चले जाते हैं, लेकिन ब्रज में ही कुछ देर के बाद फिर उतर जाते हैं अपने हंस से, और वहां रोते हैं वो, अपनी 8 आंखों के द्वारा नदियों के समान अश्रु प्रवाह करते हैं पश्चाताप के अंदर। तो एक विशाल, जैसे आपका जो ये मंदिर है ना, एग्जैक्टली ये मंदिर से भी बड़ा, शायद दुगना या तिगना, और इससे भी अधिक गहरा, शायद 3 गुना गहरा, आप इमेजिन कीजिए, उतना बड़ा कुंड बना है वृंदावन में उनके अश्रुओं से, उनका नाम है ब्रह्मकुंड। फिर वहां अश्रु बहाए बहाए तो पश्चाताप तो उनका प्रकट हुआ ना, बहुत सारा हृदय उनका हल्का हो गया। फिर वो बैठ गए हंस के ऊपर, फिर हंस के ऊपर उठकर ब्रह्मा लोक की तरह जाने लगे, फिर भी दिल नहीं भरा तो फिर उतर गए, एक जगह उतर गए अपने ब्रह्मा लोक की दिशा में पृथ्वी पर, और फिर घनघोर तपस्या किया। बोलता है नहीं, ये ऐसा पश्चाताप करके मामला मिटने वाला नहीं है, मुझे इसका ठोस उपाय चाहिए कि मैं अगले जन्म में ब्रह्मा नहीं बनना चाहता किसी भी कीमत पर, मुझे ये रिस्क लेना ही नहीं है। क्योंकि ये पद वगैरह होता ना, जो जो अधिकार होते हैं ना, उसके अंदर हमेशा हमारा दिमाग कितना भी अच्छा हो तो भ्रमित हो जाता है और सत्य से हम परे हो जाते हैं, सत्य से दूर हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा मुझे ऐसा कोई पोजिशन नहीं चाहिए जिससे परम सत्य से मैं दूर चला जाऊं और भगवान को ही संशय लूं कि भगवान है कि नहीं, भ्रमित हो जाऊं, ऐसा नहीं चाहिए। तो मुझे एकदम निश्चित निश्चय कर लिया कि मुझे अगले जन्म में ब्रह्मा बनना ही नहीं किसी भी कीमत पर। तपस्या करने बैठ गए, ऐसा तपस्या किया, ऐसा तपस्या किया कि साक्षात भगवान ने दर्शन दिया उनको। और कौन से रूप में दर्शन दिया? कृष्ण रूप में दर्शन दिया? नहीं, श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में दर्शन दिया उनको। द्वापर युग की बात है ये, क्योंकि वो तपस्या करने जहां उतरे वो आज का योगपीठ है, नवद्वीप धाम का अंतरद्वीप मायापुर धाम है वो, जहां पर आगे जाकर कलयुग में निमाई पंडित यानी चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, उसी जगह पर तपस्या किया उन्होंने। तो गौरांग महाप्रभु ने अपने गौर वर्ण में कीर्तन करते हुए अनंत प्रभाव विभोर होकर उनको दर्शन दिया, और ब्रह्मा जी ने फिर वही दोहराया, भगवान मैं बहुत प्रसन्न हूं आपका दर्शन करके, मुझे एक वादा कीजिए, वरदान दीजिए कि मैं अगले जन्म ब्रह्मा नहीं बनूंगा। यहां तक बोला उन्होंने कि ब्रह्मा तो ठीक है नहीं बनेंगे, लेकिन ऐसा बनाओ कि एकदम शुद्र एकदम तुच्छ हूं मैं, कोई पोजिशन ही नहीं हो उसकी, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं हो, कोई सम्मान ही नहीं हो, और आपका एकदम नम्र से नम्रोत्तम अवस्था में मैं भगवान आपका भजन कर सकूं, बस ऐसा गारंटी देना मुझे। तो भगवान ने कहा तथास्तु, आप यवन कुल में जन्म लोगे। यवन कुल में जन्म लोगे मतलब आपका कोई सम्मान तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप नामाचार्य बनोगे, जो नाम प्रचार करने के लिए मैं आऊंगा उसका 300,000 बार आप हर रोज जप करोगे, और फिर यवन कुल के होने पर भी नामाचार्य बनोगे, और वो है हरिदास ठाकुर। तो हमारे जो ब्रह्मा हैं वो अभी वहां पर नहीं है, क्योंकि हरिदास ठाकुर बनकर वो गौलोक धाम चले गए, उस पर अभी बदली ब्रह्मा काम कर रहे हैं, हमारे वाले ब्रह्मा जो है वो गौलोक धाम चले गए। तो ये जो ब्रह्म सम्मोहन लीला है, इसमें हम क्या सीख सकते हैं कि कभी भी हमें अपने पद का गर्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारे पद जैसे ब्रह्मा को ब्रह्म पद भगवान ने दिया है, हाँ, लक्ष्मी को लक्ष्मी पद भगवान ने दिया है, शंकर जी को महादेव पद भगवान ने दिया है, इंद्र को इंद्र पद भगवान ने दिया है। तो जो भगवान के द्वारा गिरवी रखा हुआ, हाँ, जो उधार लिया हुआ धन जो है उस पर गर्व करने का मतलब क्या है? कभी भी छीन सकते हो, लेकिन फिर भी पावर तो उसके अंदर है, ऐश्वर्य जब प्राप्त होता है तो भ्रमित करने की शक्ति रखता है, आपको भ्रमित कर भी देता है वो। इसलिए ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि अपने ऐश्वर्य को समझ लो कि आपका नहीं है, ये दिया हुआ भेंट है आपको, कभी भी उसको वापस ले सकते हैं देने वाला। गर्व करने की बात नहीं, सेवा करते रहो अपनी, कोई साधन दिया है तो उसको इस्तेमाल करो सेवा में, लेकिन वो मेरा मत समझो, अपना मत समझो, उस पर गर्व करके किसी का तिरस्कार मत करो। ये ब्रह्मा जी ने हमको सिखाया है, हाँ, ब्रह्मा जी को भगवान ने एक मतलब निमित्त बनाकर हमको सबकी शिक्षा दिया है। एनीवेज, जब वो ब्रह्मा जी एक क्षण में लौट के आए तो एक्चुअली क्या हुआ था, जैसे ही भगवान को ध्यान में आया कि ये ब्रह्मा जी का कार्य है, उन्होंने बछड़ों को और बाल बालों को उठा के ले गए, तो तुरंत उन्होंने अपने सारे ग्वाल बालों में अपने आप को विस्तारित कर दिया, ही एक्सपांडेड, अपने आप को उन्होंने सब गोप ग्वाल बाल और सब बछड़े बना लिए, ऐसे कैसे हुबहू बना दिए, जैसे मधुमंगल था वैसे बन गए, जैसे सुदामा था वैसे बन गए, जैसे श्रीदामा था वैसे बन गए, जैसे मधुमंगल वसुदामा जितने भी अर्जुन जितने उज्ज्वल सुबल मित्र थे हुबहू बन गए, वो उनकी स्टाइल उनको जैसा उनका आदत है, अपने अपने घर चले गए। वो एक साल बीत गया यहाँ का, जब ब्रह्मा जी का एक क्षण बीता, एक क्षण में जब लौट के आए तो यहाँ का एक साल बीता, और एक साल में सब गोपियों के घर में जो बड़ी गोपियां थी बच्चे वाली, उन सबके घर में कृष्ण उनका बच्चा बनकर रहे, सब गायों के गौशाला में गायों का बछड़ा बनकर श्री कृष्ण रहे, सब गायों की इच्छा थी कि हम अपने श्री कृष्ण को अपने थन से दूध पिलाएं, तो बछड़े बनकर रहे एक साल तक। सब बड़े गोपियों की इच्छा थी कि यशोदा का जो लाला है वो मेरा भी लाला बने। तो सबके घर में जो भी लाला थे वो सब कृष्ण बने। उन्होंने स्तनपान किया, उनको उनके हाथ का भोजन किया, मक्खन खाया, उनको उनको नहलाया दुलाया श्रृंगार किया, सारा आनंद जो है। उनको पता नहीं है कि श्री कृष्ण भगवान के साथ में आदान प्रदान करने में जितना आनंद उनको आ रहा है उतना ही आनंद अभी बच्चों के साथ में आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा क्यों आ रहा है, लेकिन आ रहा है। जो पहले उनको श्री कृष्ण के साथ में आया करता था अभी घर पे आ रहा है वो। सब गायों को वो आनंद आ रहा है जो उनको कृष्ण को चाटने में, और कृष्ण भी उनके थन में मुंह लगा के दूध पीते थे, कभी थन की पिचकारी मारकर बलदाव जी को देते थे। वो अभी सारा आनंद जो है वो उनको अपने बच्चों को सब खिलाने में आ रहा है, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्यों ऐसा हो रहा है। उस बीच अभी हमारी कथा वापस जाती है कात्यायनी व्रत की ओर। उस बीच भगवान ने अपने बाबा से कहा, बाबा अभी बहुत अच्छा माहौल है, तारका भी अच्छी शुभ जगह पर बैठे हुए हैं, अभी सभी गोपियों का सभी ग्वाल बालों के साथ विवाह करना चाहिए। तो नंद बाबा के नेतृत्व में, वृषभानु बाबा के नेतृत्व में जितने भी, उस समय तो शादियां बहुत जल्दी हुआ करती थी, ऐसा नहीं कि वो 20 साल के हो गए फिर शादी हो गई, जितने भी ग्वाल बाल थे उनकी सारे लोगों के विवाह गोपियों से हो गए। और सब ग्वाल बाल कौन थे? सब श्री कृष्ण थे। तो श्री कृष्ण ने उन सब की उनके साथ विवाह करने की और पत्नी बनाने की इच्छा पूरी कर दी, और एक साल तक सबके पति बनकर श्री कृष्ण रहे वृंदावन में। और उस चक्र में राधा रानी का विवाह अभिमन्यु से हुआ, जो उधर रहते थे, क्या नाम उसका, जावट में, जटिला कुटिला के घर पे। जटिला उनकी माँ और कुटिला उनकी नंदी थी, और अभिमन्यु भाई था। तो अभिमन्यु गोप के साथ में राधा रानी का विवाह हुआ और वो शादी करके जावट चली गई, लेकिन अभिमन्यु भी कृष्ण थे, सब कृष्ण थे। एक साल बाद जब ब्रह्मा जी ने सब ग्वाल बाल लौटा दिए, तो सब जो है कृष्ण जो है वो लौट आए और वो ग्वाल बाल घर चले गए, और उन्होंने कभी भी अपनी पत्नियों को स्पर्श नहीं किया, क्योंकि उनकी सेवा थी परकीय भाव को बढ़ाने की। कभी भी अपने पत्नियों के साथ में पत्नी के रूप में व्यवहार नहीं किया उन्होंने। ये है ब्रह्म सम्मोहन और कात्यायनी व्रत का कनेक्शन, और कैसे भगवान अलग अलग माध्यम से अपने भक्तों की इच्छा को पूरी करते रहते हैं। जब इच्छा प्रामाणिक होती है, शुद्ध होती है, हृदय से निकलती है, तीव्र होती है, एक सच्चे हृदय भक्त के हृदय से निकलती है, तो भगवान कैसे भी उसको पूरा कर देते हैं, समझ में आए हमको या ना आए। लेकिन सभी ग्वाल बालों का, जितने भी ब्रजवासियों का, जो भी इच्छा थी, वो सारी इच्छाएं उन्होंने एक साल में प्रत्यक्ष रूप में प्रकट करके उन्होंने पूरी कर दी। तो ऐसा ये ब्रज है, अद्भुत धाम है भगवान का, यहाँ भगवान प्रेम की दिला खेलते हैं। हाँ, ये ऐसा अद्भुत धाम है कि यहाँ पर भगवान सब कुछ छोड़कर आते हैं, वैकुंठ का ऐश्वर्य जो है उसको छोड़कर ब्रज में आते हैं। वैकुंठ में क्या नहीं है, अनंत लक्ष्मियाँ उनकी सेवा करती है, वो छोड़ के आते हैं। चलो अकेले आ गए तो भगवान बनकर तो आते नहीं, भगवत्ता भी छोड़ दिया उन्होंने, भगवान मैं जो भगवान हूँ मेरा पोजीशन, वो भी छोड़ के भगवान ब्रज में आ गए। एक सामान्य व्यक्ति बनकर आए, एक बालक बनकर आए, एक बेटा बनकर आए, एक दोस्त बनकर आए, एक ग्वाला बनकर आए, हाँ, वन में घूमने वाला, नंगे पैर चलने वाला, फूलों की माला वन माला पहनने वाला, मोर मुकुट धारण करने वाला बन गए। कोई वैदुरी मणि का मुकुट नहीं पहना उन्होंने, कोई कौस्तुभ मणि, कोई वैजयंती माला, सब कुछ छोड़ के आ गए। वो स्वयं कहते थे कि वैकुंठ का ऐश्वर्य मैंने ब्रजवासियों गोपियों का छाछ पीने के लिए छोड़ के आया हूं, मैं यहां पर मैं चोरी करके खाने के लिए आया हूं। ब्रज का आनंद जो है निश्चित रूप से महान होगा ना, नहीं तो वो इतना ऐश्वर्य छोड़कर क्यों आते, वो भी चोर बनकर खाने के लिए क्यों आते वो। तो प्रेम का जो धन है उसका महात्म्य बताने के लिए भगवान स्वयं वैकुंठ का अपना पोजिशन छोड़कर ब्रज में आए। वो ब्रज है वो जिस जहाँ पर हम जाते हैं, यहाँ से 6 घंटे का अंतर है, 400 किलोमीटर, वो ब्रज है जो गौलोक धाम का 84 कोस का हिस्सा भगवान ने यहाँ प्रकट किया है। केवल लैंड प्रकट नहीं किया है, पूरे भाव के साथ में प्रकट किया है। भगवान भी सब कुछ छोड़कर एक सामान्य व्यक्ति बनकर वहां पर पहुंच जाते हैं और हमको भी बताते हैं कि कैसे ब्रज में रहना है, कैसे अपने आप को मिटाकर भगवान का बनकर रहना है, ये खुद भगवान सिखाते हैं। यहां तक कि वो ब्रज में एक तो सामान्य व्यक्ति बनकर रहे, लेकिन जब बरसाना में जाते थे तो वो अपना पुरुष का रूप छोड़कर स्त्री बनकर जाते थे, सखी बनकर जाते थे, श्यामा गोपी बनकर जाते थे, पूरा स्वत्व छोड़ दिया उन्होंने प्रेम की वजह से। उस प्रेम को प्रकट करने के लिए, अर्पण करने के लिए और स्वीकार करने के लिए, हाँ, जो रिप्लाई में आता है ना प्रतिसाद के रूप में, उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया, स्वत्व भी छोड़ दिया उन्होंने। हमें ये बताने के लिए हमें भी भगवान को प्राप्त करना है, उनका प्रेम प्राप्त करना है, तो हमें भी सब कुछ छोड़ देना होगा। हम कौन है, फलाना ऑफिसर है, फलाने सुंदर है, फलाने अधिकारी है, धनवान है, प्रॉपर्टी वाले हैं, हमारे कितने सारे हमारे अंग हैं व्यक्तिमत्व के, लेकिन भगवान के सामने सब तुच्छ हैं, क्योंकि भगवान का ही सब दिया हुआ है। हमारा क्या है उसके अंदर, फिर क्या करेंगे भगवान के लिए हम? हमारा उसमें भाव है, हमारा प्रेम है, हमारी सेवा है, जो हमारी खुद की होती है। चाहे आपको बच्चा जो है ना वो आपका ही दिया हुआ पॉकेट मनी जमा कर करके आपका बर्थडे याद करके पापा को बर्थडे के दिन 5 रुपये का एक गोली या चॉकलेट भेज देता है, हैप्पी बर्थडे पापा, हैप्पी बर्थडे मम्मी, तो उस समय मम्मी पापा ऐसा नहीं बोलते हैं, क्या बड़ी बात है, मेरा ही तो पैसा है, मैंने तो दिया था आपको। नहीं, पापा मम्मी जानते हैं कि मेरा ही पैसा है, मैंने सब कुछ दिया है, लेकिन भाव और प्रेम खुद का है उसका, जो उस 5 रुपये के चॉकलेट के माध्यम से वो प्रकट कर रहा है, उसको मम्मी पापा स्वीकारते हैं, है ना। वो चॉकलेट का देखते नहीं MRP कितना है उसके ऊपर, वो नहीं देखते। उसी तरह से ये सब कुछ आपका जो है भगवान का दिया हुआ है, लेकिन उसमें से कुछ जब आप उनको देते हो भेंट के रूप में, तो वो भेंट का जो बाहर का जो रूप है ना, उसको स्वीकार नहीं करते। वो उसके पीछे जो भाव है आपका, वो आपका ओरिजिनल खुद का भाव है, उसको स्वीकार करते हो। बाकी सब जो माध्यम है, कोई वस्तु है, कोई शॉल है, कोई भोग वस्तु है, कोई अलंकार है, कोई वस्त्र है, आप डोनेशन दे रहे हो, वो तो सब उनका है, आपका उसमें कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं उसके अंदर, लेकिन भाव हमारा है। जिस भाव से, जिस प्रेम से हम देते हैं, वो हमारा है, उसको भगवान, इसलिए उनका नाम क्या है, भावग्राही जनार्दन। ऐसे भगवान मिलना बहुत मुश्किल है, ऐसे कोई दूसरे भगवान ऐसे नहीं हो सकते जो केवल भाव ग्रहण करते हैं। हम देखते हैं ना, कोई गिफ्ट मिला तो देखते हैं कितने रुपए का है, कौन से कंपनी का है, शर्ट दिया तो पैंट दिया, अगर कोई धोती दिया तो वो कौन से कंपनी का है, क्वालिटी क्या है, कितना पन्ने वाला है, वो कितना कॉस्ट है उसका, वो देखते हैं और फिर खुश होते हैं या दुखी हो जाते हैं। लेकिन एक माँ जब अपने बालक से गिफ्ट पाती है तो वो खुश ही रहती है, तो कितना भी तुच्छ अगर आइटम होगा, फिर भी जो प्रेम है उसको वो ग्रहण करके आनंद पाती है। ऐसे हमारे भगवान जो है, हमारे से अगर इतना सा या इतना बड़ा अगर हम देते हैं, तो उसके पीछे जो भाव है उससे वो प्रभावित हो जाते हैं। अगर हम बड़े करोड़पति हैं और कुछ लाख रुपए का गिफ्ट भगवान को दिया हमने, तो भगवान देखते हैं कुछ लाख का गिफ्ट तो दिया, करोड़ों अपने जेब में रखे। गरीब के घर में जाते हैं, हाँ, सूखी रोटी खाते हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि सब कुछ जो था उस दिन का उसने दे दिया उसको। जब विदुर के घर पे गए तो विदुरानी घर में अकेली थी, है ना, 56 भोग का उनको निमंत्रण था दुर्योधन के घर पे, एकदम 5-स्टार फीस्ट, हाई क्वालिटी VIP। उसके महल से गुजरते को लगता था कि वही जाएंगे अभी, उसके महल से वो आगे चले गए सीधे, और आगे जाकर विदुर की झोपड़ी में चले गए। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई बताया इन्फॉर्मेशन नहीं कि मैं आ रहा हूँ और सब तैयारी है, कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं, विदुर भी घर पे नहीं है, विदुर की पत्नी अकेली है। विदुर की पत्नी तो इतनी भाव से विभोर हो गई, अरे आप भगवान आ गए, अरे क्या करूँ मैं, कुछ तैयारी नहीं, घर में कुछ सामान नहीं, ऐसा नहीं, अरे क्या करूँ मैं, कैसे स्वागत करूँ इनका। तो अंदर भाग भाग के गई तो कुछ केले दिखाई पड़े, तो भाग के आई और केले खोल के उनको खिलाने का प्रयास करते करते केले खोल रही है और भगवान को देख रही है, आंखों से अश्रु बह रहे, और वो केले, हम लोग कैसे करते हैं ना, केला खाते हैं तो थोड़ा छिलते हैं ना, फिर खाते हैं, फिर थोड़ा अधिक छिलते हैं, फिर थोड़ा खाते हैं, फिर अधिक छिलते हैं, फिर खाते हैं, फिर लास्ट में पूरा छिलते हैं और वो लास्ट का हिस्सा खा देते हैं। लेकिन ये भाव में इतनी विभोर थी कि उसने पूरा ऐसा केला खोल दिया कंप्लीट, और केला ऐसा फेंक दिया और छिलका भगवान के हाथ में दी, और भगवान छिलका खाए जा रहे हैं। अद्भुत बड़ा दर्शन था वो, एक एक किला खोल के किला फेंके जा रही है और किले का खिलका भगवान को मुख में खिला रही है, और भगवान भी बड़े चाव से खा रहे हैं, उनके भी आंखों से अश्रु बह रहे हैं, विदुर रानी की आंखों से भी अश्रु बह रहे हैं। इतने में खबर पहुंचती है कि विदुर कहीं चले गए थे कि भगवान तुम्हारे घर पे आए। वो भाग भाग के आते हैं और देखते हैं, अरे क्या पगली औरत क्या कर रही हो तुम, केला तो कम से कम खिलाती, बाकी कुछ नहीं है तो वो छिलके खिलाई, केले फेंक रही हो और वो भी देखो खा रहे। तो वो कुछ बोलते हैं तो बोलते डिस्टर्ब मत करना, वो चल रहा है वो चलने दो। ऐसे ही शबरी उनको वो निकाल निकाल के मुंह से बेर खिला रही है और लक्ष्मण जी डिस्टर्ब हो रहे हैं, ये क्या बदतमीजी है, ये कौन सी बदतमीज औरत, जंगल की भिल्ल औरत, क्या समझती है अपने आप को, हमारे ठाकुर को झूठा बेर खिलाती है। तो बोलते बोलने का काम नहीं है, बाद में बताऊंगा, अभी चुप रहो। वो सारा बेर खाते रहे, सारे छिलके खाते रहे। ये प्रेम है, इस प्रेम के भूखे हैं वो आपके ऐश्वर्य के भूखे नहीं है, अपने बंगले गाड़ी के भूखे नहीं है, प्रेम चाहते हैं। तो यहां पर आओ और अपना प्रेम भगवान को दो। प्रेम में भगवान, प्रेम अगर होता है ना कोई किसी का, तो आदमी सब कुछ निछावर कर देता है, सब कुछ निछावर कर देता है। प्रेम होगा तो फिर उसके लिए, अभी देखो बीवी के लिए अगर मार्केट लेके गया तो फिर कुछ बंधन होता है क्या उसके अंदर? मंदिर आएंगे बोलेंगे डोनेशन दो, तो सोचते हैं 100 एक दूं कि 1000 एक दूं कि 500 एक दूं, कि अभी तो वो 500 1000 की नोट भी खत्म हो गई, अभी क्या करूं, सब 100 ही ले लो, अभी बैंक में तो बहुत सारा लेकिन अभी तो 100 ले लो। लेकिन जब बीवी को लेकर मार्केट जाते हैं तो वो बोलेंगे तो नोट ही तो नहीं है, लो कार्ड निकालो, कार्ड कार्ड में तो है ना, स्वाइप करो उसको, साड़ी ले लो, ये ले लो, वो ले लो, बर्तन ले लो, गहना ले लो। तो प्रेम से पति दे देता है उसको, प्रेम ही ऐसी वस्तु है। बच्चा कुछ मांगेगा चीज ले लेंगे, बच्चा को कुछ जरूरत चीज है तो ले लेंगे, एडमिशन देना है उसको तो खर्च करेंगे उसके लिए, मंदिर में आएगा तो सोचेंगे, गणित करेंगे कैसे कितना होगा। लेकिन जब जैसा प्रेम हमारे घर वालों पर हमको भगवान के प्रति होता है, तो फिर सारा प्रेम जैसे घर वालों पर व्यक्त करते हैं वैसे भगवान पर व्यक्त करते हैं, और जो भी है वो उन पर निछावर कर देते हैं। और भगवान भी कैसे, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तदैव भजामि हम, जैसे हम पेश आते हैं वैसे अपने आप को पेश करते हैं, वो भी कुछ कम नहीं है। तो जगत निर्माण करता है वो, जगत नियंता है वो, हम क्या देंगे उनको दे देकर, सब कुछ देंगे तो भी चींटी कितना दे सकती है हाथी को, पेट भरेगा हाथी का, चींटी ने अपना पूरा खाना दे दिया स्टॉक उसको, तो हाथी बोलेगा ठीक है अच्छा है, प्रेम है तुम्हारा, थैंक यू वेरी मच, लेकिन पेट तो नहीं भरेगा, अपने आप भर लूंगा कहीं। भगवान भी आपका प्रेम देकर संतुष्ट हो जाते हैं, फिर कृपा करते हैं, अपना बना लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अपना बना लो भगवान को, बड़े लालायित हैं वो आपका बनने के लिए और आपको अपना बनाने के लिए। और यही है इस्कॉन मोमेंट, हाँ, आपको भगवान का बनाने के लिए और भगवान को आपका बनाने के लिए। अपना रे बोली, यही देने के लिए प्रभुपाद जी आए थे, ये धन लुटाने के लिए आए थे, और बहुत धन लुटा कर चले गए। हम खाली लेने में कम पड़ते हैं, संकोच करते हैं, नहीं नहीं हम तो फिर ये, हम लोग तो साउथ इंडियन ब्राह्मण है, हमारा तो अपना रिवाज होता है, पर बोले हम तो पंजाबी हैं, हम तो कश्मीरी ब्राह्मण हैं, तो मारवाड़ी है, हम तो फलाना है, हम तो ये नहीं कर सकते, तो हरे कृष्णा में कौन जाएगा, आप सोच सकते हो। लेकिन जो धन यहाँ पर प्रभुपाद ने लुटाया है, जिसको समझ में आया है, उसका जीवन तो भाव विभोर है, आनंद से भरा हुआ है, एकदम भाव विभोर। हाँ, तो आप सबको विनती है कि ये जो फॉर्मूला प्रभुपाद जी ने दिया है भगवान को अपना बनाने का और हम खुद भगवान के बनने वाला, वो अपना लीजिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपने हमारे लिए इतना समय दिया, आप सबका बड़ा धन्यवाद है। हरे कृष्णा।